की कृष्ण बलराम की
हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कक्षा में।
तो जानते ही
हैं। फिर थोड़ा सा आपका स्वागत करेंगे। तो आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं, हिज ग्रेस असीम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी पिछले काफी वर्षों से 25 वर्षों से भी अधिक इस्कॉन संस्था में सेवा कर रहे हैं। इस्कॉन जुहू में बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इन्होंने मैनेजमेंट में की, टेंपल कमांडर की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, और भक्तों के बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अपनी सुंदर मधुर कथाओं के लिए। परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और बहुत खुशी की बात है कि ये संन्यास कैंडिडेट हैं। बहुत ही जल्दी इनको संन्यास आश्रम ग्रहण करना होगा, इनको संन्यास आश्रम प्रदान किया जाएगा। और अभी भी उसकी तैयारी में पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, विशेषकर मलेशिया में, फिजी आइलैंड्स में। तो आज हमारे बीच में यहाँ आए हुए हैं, हमारा परम सौभाग्य है। इनके संग का हम पूरा लाभ उठाएं। कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे कर दें और आइए इनका हम स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे श्री राधा पारसाथी मंदिर से आए हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु का। बलभद्र प्रभु बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, फुट फॉर लाइफ के वहाँ इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं और हमेशा भक्तों की सेवा के लिए उद्यत रहते हैं। और साथ में आए अन्य भक्तों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण।
बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का नेतृत्व कर रहे हैं रुक्मिणी रमण प्रभु ना प्रभु जी, रुक्मिणी रमण प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु भूल। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं कुछ बोल सकूं और आप सब लोग जैसा अच्छा भक्ति में उन्नति करो। तो आप सबों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का जो पाठ है उस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके। तो श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 3 एवं 4, तीन में तात्पर्य नहीं है तो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं ना। आवृत्ति 4 की करेंगे ना, आवृत्ति 4 का करेंगे, तीन को पढ़ना है। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलांद्री सप्त रत्नौघ सात कौंभांबरावृतान। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20,00,000 गौवें दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। श्लोक संख्या 4। काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपसा इज्जया शुध्यन्ति दानै संतुष्टया द्रव्यान् आत्मा आत्मविद्यया। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपसेज्जया शुध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यान् आत्मा आत्मविद्यया।
कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यान् आत्मा आत्मविद्यया कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यान् आत्मा आत्मविद्यया शब्दार्थ कालेन समय आने पर स्थल तथा अन्य वस्तुएं पवित्र हो जाने पर स्नान शौचाभ्याम स्नान तथा सफाई के द्वारा शरीर तथा मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार द्वारा जन्म शुद्ध होता है। तपस्या द्वारा इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इज्जया पूजा द्वारा ब्राह्मण शुद्ध बनते हैं। शुद्ध्यन्ति शुद्ध बनते हैं। दानई दान द्वारा संपत्ति शुद्ध होती है। संतुष्टया संतोष से मन शुद्ध होता है। द्रव्याणी सारी संपत्ति यथा गौवें भूमि तथा सोना आत्मा शुद्ध बनता है। आत्मविद्या आत्म साक्षात्कार द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। हे राजन समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती हैं। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए इसके विषय में ही ये आदेश हैं। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कलमश ग्रस्त कर देगी। भारत में 5000 वर्ष पूर्व गांवों तक में यथा नंद महाराज के गांव में भी लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाता है जिसके कारण वे कलमश रहित जीवन बिताते थे। तीस अध्याय में नंद महाराज किस तरह से गोकुल में नंदोत्सव मनाए और दान दिए। दान में बहुत सारी वस्तुएं दिए, भूमि दान किए, गोदान किए, स्वर्ण दान किए, अन्न दान किए। दान एक बहुत बड़ा गुण है जिससे हम पवित्र होते हैं। दान का बड़ा विशेष महत्व है आध्यात्मिक जीवन में। बड़े बड़े दानी हुए हैं जो अपना सर्वस्व दान कर दिए हैं, जैसे दधीची शिवी हरिश्चंद अपने शरीर तक का भी दान किए हैं। और जो दान किया है उसी का नाम भी है। दान लेने वाले का नाम नहीं होता है, देने वाले का नाम होता है। लेने वाले का नाम अगर लिखा जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन लेने वाले का महत्व नहीं होता है, देने वाले का ही। अनाउंस भी होता है तो देने वाले का ही नाम अनाउंस होता है, लेकिन ये अमुक व्यक्ति ने इतना दान दिया। इसलिए गीता में भी भगवान के कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान तप करना ही चाहिए, त्याजनीय नहीं है, इसको हमेशा करना चाहिए। इवन बड़े बड़े महात्मा भी दान करते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े मठ के अध्यक्ष लोग भी दान करते हैं, कंबल दान करना, अन्न दान करना, फूड फॉर लाइफ, जैसे बलभद्र प्रभु फूड फॉर लाइफ करते हैं। इसके द्वारा हम अपने आप को, अपनी वस्तुओं को शुद्ध करते हैं, जैसे स्नान से हम शरीर को शुद्ध करते हैं। शरीर को स्नान न कराया जाए तो शरीर जो है दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध आने लगता है। अगर कोई स्नान न करे, मुख न धोए, तो कोई नहीं बैठ सकता है पास में। शरीर को शुद्ध करने के लिए हम दो बार स्नान करते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए तब से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, संतोष से मन शुद्ध होता है, और आत्मा आत्मविद्या, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना का अनुशीलन करने से आत्म शुद्धि होता है, भजन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। कई साधन हैं शुद्ध होने के लिए, जैसे भूमि जो है कालांतर में शुद्ध हो जाती है, जमीन पर कितना भी कूड़ा हो, कचरा हो, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, जमीन पर पंख हो, कीचड़ हो, सूर्य के प्रकाश से धीरे शुद्ध हो जाता है, जमीन में गड्ढा भी खोद दीजिए तो अंतराल, समय के अंतराल से भर जाता है। तो शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम अज्ञान रूपी अंधकार में जन्म लिए हैं, मायाबद्ध जीव हैं, इसलिए शुद्धि की हमेशा जरूरत है। तो नंद महाराज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर अनेक वस्तुएं दान दिए, धेनु मतलब गाय दिए, गोदान, गाय दान का बड़ा महत्व है। गाय में सारे देवता निवास करते हैं और गाय में गोविंद का भी वास होता है। गाय जो है सारे देवताओं को भगवान समेत वहन करती है, और गाय जो है मनुष्य समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार करती है। गाय के दूध से अनेक व्यंजन बनते हैं, गाय का दूध, घी, दही हमारे मस्तिष्क के लिए, शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए गाय दान बड़ा दान है, गाय का हर चीज जो उपयोगी है। गाय का दूध भी अमृत के समान है, अमृतम क्षीर भोजनम, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। गाय का मूत्र दूध से भी अधिक मूल्यवान है, गाय का जो मूत्र है वो बहुत औषधि है, बहुत गुणकारी है, और गंगा से भी अधिक पवित्र है। गंगा में तो लोग अपना पाप भी छोड़ देते हैं, सब लोग गंगा में नहाने जाते हैं, नाला गटर सब गंगा में बहा देते हैं, लेकिन गोमूत्र जो है बिल्कुल प्योर है, गंगा से भी अधिक पवित्र है गोमूत्र। इसलिए भगवान के सेवा में पंचगव्य में गोमूत्र का प्रयोग होता है, गोबर का, गाय का दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गो पंचगव्य बनता है। पंचामृत में भी गाय का ही दूध, दही, घृत, मधु, जल इत्यादि होता है। तो गाय कितना उपयोगी है, गाय के बिना हम पूजा संपन्न नहीं कर सकते हैं। कोई भी आध्यात्मिक यज्ञ हो, उत्सव हो, पूजा हो, हवन हो, बिना गाय का संपन्न नहीं होता है। इसलिए गाय लोग रखते थे और दान करते थे। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को गाय दान दिया, दुधारू गाय यानी कि बूढ़ी गाय। कोई गाय बूढ़ी है तो लोग बोलते हैं दान कर देते हैं, दुधारू गाय दान दिए। और कितना दिए तो नींव थे 20 लाख गाय दान किए, सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। आज लोग बैंक ये कल्पित है, कल्पना है। कोई कहेगा 20 लाख गाय कहाँ रखते थे, उतना रखने का जगह कहाँ था। ना दान देने के लिए उतने ब्राह्मण होंगे, कितना समय लगा होगा। कल्पना से परे है, अपने विवेक के अगर पैमाने पर मापेंगे तो नहीं माप पाएंगे। नहीं, आज के परिवेश में अगर इसको मापा जाए तो लोग बोलेंगे कि नहीं ये अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। 20 लाख गाय प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, और गायों का श्रृंगार हुआ था, श्रृंगार करके अलंकार से गले में स्वर्ण माला, सिंह को सोने से सजाया गया था, खुर को भी समलंकृते पूरी तरह से सज्जित, और वस्त्र से भी, जैसे वसुदेव देवकी के विवाह में देवक जी 400 हाथी दान दिए थे, 400 हाथी ना 18,000 घोड़े दान दिए थे, तो हर हाथियों का श्रृंगार जो है सोने के माला से हुआ था, सब हाथी स्वर्ण माली थी। जैसे भगवान वन माली हैं तो स्वर्ण माली, हाथियों के गले में स्वर्ण की माला, आज आदमी को भी नहीं मिलता है पहनने के लिए। महाराज कह रहे थे कि पहले पशुओं को भी सोने के आभूषण से श्रृंगार होता था, अब आदमी पहनते नहीं है, तो पहनना है तो लोग इमिटेशन गोल्ड पहनते हैं, नकली सोना, कि भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। महाराज कह रहे थे कि बेचने वाले भी बोलते हैं कि सोने से कम नहीं, अब भूल जाए तो गम नहीं। बेचने वाले बोलते हैं ना, क्या असली पहन रहे हो, असली सोना पहनना यमराज को दावत देना है, इसलिए नकली से ही काम लोग चलाते हैं। जिसके है भी तो साहस नहीं करता है पहनने के लिए, जा रहे हैं लेट होगी, कोई होगा कोई छीन लेगा। ट्रेन में हम देखे थे भभुआ रोड में ट्रेन स्लो हुई और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बॉम्बे मेल पकड़ने के लिए, ट्रेन आ रही थी तो उसमें एक माता जी सोने का ये पहनी थी बाली, तो जो चोरी करने वाला टारगेट किया था, जैसे ट्रेन स्लो हुई नोच लिया, वो नोच करके कूदा, लेकिन वो माता जी बहुत चिल्लाई तो लोग उसको जंप करके पकड़ लिए, चलती ट्रेन में कूदा, तो हम लोग प्लेटफार्म में थे देख रहे थे, उसको बहुत लोग पिटाई कर रहे थे, माता जी का कान बिल्कुल फट गया था। टारगेट किया होगा कि जैसे ट्रेन स्लो होगी ये करूँगा, लेकिन उसका टारगेट फेल हो गया, नहीं कामयाब हुआ। इतना वो माता जी जोर से चिल्लाई कि सब लोग अलर्ट हो गए, यंग लड़के थे, जंप जैसे जंप किया तो लड़के भी जंप कर गए, पकड़ लिए उसको। तो सोना पहनना यमराज को दावत देना है, इसलिए नकली ही पहनी है, भूल भी जाए तो कोई गम नहीं। कि उस समय पशुओं को भी सोने से सजाया जाता था। महाराज देवक ने देवकी विवाह में 400 हाथी दिए थे और सबके गले में सोने की माला थी। तो यहां पर भी समलंकृते, उन गायों का श्रृंगार हुआ था बहुत अच्छा तरह से। पहले लोग घंटी बांधते थे गले में, घंटी होता था कासे का, तो इसके पहले सोने का चांदी का घंटी लोग मानते थे। तिलाद्री, तिल अद्रिन, अद्रि माने पर्वत, तिल के पर्वत बनाए गए थे। तिल का लड्डू हम लोग खाते हैं ना, तिल का, अब तो तिल बहुत कम होता है, तिल की खेती बहुत कम होती है। तिल बहुत शुद्ध होता है, तिल का सेवन करने से कफ वात पित्त बीमारी नहीं होती है, बहुत सारी दवाइयों में काम आता है तिल। तिल के तेल से मसाज करने से भी, हवन में भी तिल का प्रयोग होता है, पितरों को पिंड दान करने के लिए तिलांजलि देते हैं ना तिल, पितृतर्पण में भी तिल होता है। तो ब्राह्मणों को 7 पहाड़, तिल का पहाड़ बनाया गया था। तिल का ताड़ कोई बनाता है लोग बोलते हैं तिल का ताड़ करता है एक कहावत है ना तिल का ताड़, कोई ऐसे आदमी होते हैं कि छोटी बात को भी बड़ा बना देता है, तिल का ताड़ बोलते हैं, इसे सावधान रहना, ये तिल का ताड़ है, मैं छोटा बात को भी बहुत बड़ा कर देना, झगड़ा लगा देना। लेकिन यहां तिल, तिलाद्रि, तिल का पहाड़ बना दिए थे नंद महाराज, और केवल बात से नहीं, बात का पुआ नहीं पकाए थे, रियलिटी में और दान किए। हम लोग तो तिल का ताड़ बनाते हैं, लेकिन वो पहाड़ बना दिए, और वास्तव में बना दिए, वास्तविकता में। सप्त, 7, और उसको भी सजाया गया था रत्न से, वस्त्र से, रत्न औघ, रत्न औघ 7, कुंभ, अंबर, आवृतान, रत्नों तथा सुनहरे किनारे वाले वस्त्रों से ढके गए थे, ऐसे वस्त्र से उसका श्रृंगार किया गया था। रत्न औघ 7, कुंभ, अंबर, आवृतान, रत्नों तथा सुनहरे किनारे वाले वस्त्रों से ढके थे। कितना बड़ा दान ये है, कोई भिखारी आता है तो लोग 1 किलो चावल दे देंगे तो बोलेंगे बहुत दे दिया, लेकिन पहाड़, तिल का पहाड़ बना कर दिए। 20 लाख गायें दान दिए, पहले ये सब दान में देते थे लोग, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, धन मतलब ये होता था, हाथी, घोड़ा, गाय। अब जो धनी है वो उसके यहाँ BMW कार है, मर्सिडीज बोलते हैं ना, ये सब कार है, तो बोले बहुत धनी है। पहले धनी मतलब जिसके पास ज्यादा गाय हो, बहुत खेती हो। पहले दरवाजे पर कोई आता था तो देखता कि इसके दरवाजे पर कितने बैल बंधे हैं, 20 बैल है, मतलब 10 हल चलता है, यही ना देखते थे। गांव में तिलकहरू आते थे, तिलकहरू जानते हैं आप लोग, मान लीजिए किसी लड़के का विवाह करने के लिए लड़की पक्ष आते थे, जिसके बाद लड़कियां हैं तो वो लड़का ढूंढने के लिए जाते थे, तो लड़के के घर जाते थे तो देखते थे इसके दरवाजे पर कितने बैल हैं, बैल से मालूम पड़ेगा कि इसके पास खेती ज्यादा है, 10 बैल है तो 5 हल चलता है, गाय कितना है, इसका पुआल कितना है, धान जो खेती में काटकर पुआल जमा होता है ना, तो पुआल से लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा कृषक है, जमींदार है। तो ये सब इसके द्वारा लोग पैमाना निकालते थे, मेजरमेंट करते थे कि हाँ ये धनी है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, सोना चांदी जवाहरात ये सब होते थे। अब ये सब धन खत्म हो गए, अब क्या है, जब आवे घर घुस धन, सब धन धूल समान, तो बोलते हैं घुस मिलती है, ऊपरी आमदनी है, नौकरी में ऊपरी आमदनी है कि नहीं, तो बोलते हैं जब घुस घर में आता है तो सब धन उसके आगे धूल के समान है, 2 नंबर की कमाई लोग बोलते हैं। एक कहानी हम पढ़े थे नमक के दरोगा, अभी आप लोग ही पढ़े होंगे नमक का दरोगा। ब्रिटिश काल में एक दरोगा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर की बहाली होती थी विशेष करके नमक के लिए, नमक का बहुत कालाबाजारी होता था, चंदा नमक, अब तो पाकिस्तान में चला गया। तो जो नमक के दारोगा के पद पर बहाल होते थे, वो विभाग था नमक विभाग, तो उनकी बहुत ऊपरी आमदनी होती थी। तो नया नया लड़का नमक के दारोगा के पद पर बहाल हुआ था, तो उसका बाप कह रहा था कि बेटा देखो, जो ऊपरी आमदनी है, बहता हुआ नदी का स्रोत है, इससे हमेशा प्यास बुझाई जा सकती है, और वेतन है तो दूज के चांद की तरह है, महीने में एक बार दिखाई देता है। द्वितीया का चांद जो है एक बार ही दिखाई देता है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी है या नदी का बहता हुआ स्रोत, इससे नित प्यास बुझाई जा सकती है। अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मैंने ऊपरी आमदनी में ज्यादा ये है, ज्यादा एक दो नंबर का पैसा लेने का ये शिक्षा दे रहा था। तो जो घूस आजकल बोलते हैं, बहुत घूस मिलता है, बहुत इनको इनकम है, दो नंबर का पैसा है, तो बोलते हैं बहुत धनी है। लेकिन पहले धनी मतलब लोग कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, धन के ही स्रोत थे। लोग मेहनत करके धन जमा करते थे, दो नंबर से नहीं, परिश्रम करते, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि कार्य से, गोरक्षा से, और व्यवसाय करते थे। अब जो है शेयर बाजार हो गया है, शेयर बाजार सट्टा ही है ना, शेयर बाजार, और पैसा देना, ब्याज पर पैसा चलाना, बहुत अलग लगते। लेकिन पहले तीन ही साधन, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, आर्थिक, यही सबसे बड़ा तीन कारगर चीज थे, कृषि, गोरक्ष। इसलिए कृष्ण गाय चराते थे और बलराम जी खेती करते थे। बलराम जी हमेशा हल लिए रहते थे ना, जहां खेत देखते थे उसको जोत करके उपजाऊ बना देते थे। बलराम जी हल आयुध लिए हैं ना, हल आयुध है जिनका, तो हल केवल दिखाने के लिए नहीं लेते हैं, जहां जमीन देखते थे बंजर उसको जोत करके उपजाऊ बना देते थे। तो बलराम जी दोनों भाई में हुआ कि आप खेती देखो, मैं गाय देखता हूं। तो भगवान कृष्ण हमेशा गाय के पीछे रहते थे और बलराम जी हल लेकर रहते थे। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ब्रज में यही तीन सबसे बड़ा कारगर इकोनॉमिक बेस था। तो नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गांवें दान में दी। उन्हें रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि में शुद्ध होने के लिए दान देना चाहिए। बड़े बड़े मनुष्यों को भी गीता में भगवान कहते हैं, पावनानी मनीषिणाम, ये यज्ञ दान तप जो है बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। पावनानी मनीषिणाम, बड़े बड़े मनुष्यों को ही पवित्र करता है। इसलिए दान देना एक बहुत बड़ा गुण है। सब लोग दान नहीं दे सकते हैं, बहुत लोगों के पास है लेकिन दे नहीं पाते हैं। उदारता जो है सब में नहीं है, पैसा है सोचना चाहिए दे दूं कि न दूं। देने के लिए निकालेंगे भी तो 100 कानून के तो रख देंगे कि 10 वाला निकालना था, अपने मन पर ही कोसेंगे कि 10 का निकालना, 100 कैसे निकल गया। मान लीजिए कभी कि हम लोग भी निकालते हैं ना, 500 काट निकल अंदर कर लेते हैं, ये तो देखेगा पंडित तो बोले कि 500 वाला दे दीजिए। मंदिरों में जाते हैं ना हम लोग भी, तो निकालने गलती से अगर 500 का गया तो उसको अंदर कर लेते हैं, 10 वाला निकालना है। 10 वाला में भी ज्यादा कड़क है तो पुराना वाला देना है, जो न चले, कहीं ना चलता है तो मंदिर में चलने लगता है, है कि नहीं। जो नोट कहीं ना चले मंदिर में डाल दीजिए, चलने लगता है, भगवान की कृपा सब लोग बोलने लगते हैं, है कि नहीं। मुख होई बाचाल पंगु लंगे गिरिवर गहना, लंगड़ा भी पहाड़ को लांग जाता है और गूंगा भी बोलने लगता है। तो कितना भी पुराना नोट हो चल जाता है, यहाँ तक कि नोटबंदी में लोग पैसा देते थे हम लोगों को कि प्रभु जी हमारे यहाँ 50,000 रुपया विद्यादान में ले लीजिए, तो चल जाता था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे इसलिए दान कर रहे थे इतना, तो कोई दान थोड़े करेगा इतना। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए। तो दान देना, धन दान देने से धन की शुद्धि होती है। धन उपार्जन में बहुत पाप होते हैं, धन कमाने में जैसे खेती करने में बहुत सारे जीव मर जाते हैं, खेत जोतने में जीव मर जाते हैं, फिर उसको थ्रेसिंग करते हैं, ओसवनी करते हैं, तो बहुत सारे जंतु मर जाते हैं। कोई भी धन उपार्जन में पाप होता ही है, कोई भी आप कार्य करिए उसमें जरूर पाप होगा। गाड़ी चलाने में, जुताई करने में, रुपाई करने में, आप खेत कोड़ते हैं तो बहुत सारे केचुए कट जाते हैं, मेढक कट जाते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, बहुत जंतु मर जाते हैं। तो धन उपार्जन करने में बहुत पाप होता है। बिना पाप किए धन आप उपार्जन नहीं कर सकते हैं। भोजन बनाने में भी, आग जलाने में, धोने में, चावल धोते हैं तो कितने कीड़े मर जाते हैं। चावल गांव में हम लोग देखे हैं, बस शहरों में भी लोग जब चावल धोते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं, सफेद कीड़े होते हैं और काले कीड़े, तो जब हम धोते हैं तो उतने जीव मर जाते हैं। लकड़ी जलाते हैं तो उसमें बहुत चींटियां होती हैं, कीड़े मर जाते हैं। रात में भी दीपक जलाते हैं, बहुत जंतु आकर मर जाते हैं। तो कोई भी कार्य करने में पाप होता ही है, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए ये सब नियम बताए गए हैं। धन की शुद्धि जो है दान करने से है। आपके पास जितना इनकम है उसका कुछ दान करना चाहिए, जिससे धन शुद्ध होता है। तो नंद महाराज बहुत उदार थे इसलिए इतना दान किए। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। जब भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए, अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। जैसे जन्म शुद्ध होता है, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, द्विजाति संस्कार, कई संस्कार हैं, संस्कार से जन्म शुद्ध होता है और भोजन भोग लगाने से शुद्ध हो जाता है। भोजन बनाए हैं तो उसको शुद्धि कैसे करेंगे? भोजन बनाने में भी तो बहुत सारे जीव मर गए, मसाला पीसने में, झाड़ू लगाने में, आग जलाने में, चावल धोने में, तो पंच सुन उसको बोलते हैं। तो भोजन शुद्ध कैसे करेंगे? तो भगवान को भोग लगाने से। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, भगवान को भोग अर्पण करने से शुद्ध हो जाता है। यज्ञा शिष्टा सिन्हासंत मुचंते सर्व किल विषयी, यज्ञ में उच्छिष्ट जो भगवान विष्णु को जो अर्पित हो जाता है तो उच्छिष्ट हो गया, भगवान का उच्छिष्ट हो गया, तो उच्छिष्ट खाने से पाप नहीं लगता है। यज्ञा शिष्टा सिन्हासंत मुचंते सर्व किल विषयी, सारे किलबिष से मुक्त हो जाते हैं भगवान को अर्पण कर देने से। तो हर वस्तु का शुद्धि होता है। चादर ओढ़े हैं तो उसको भी धोना है, कपड़ा पहने हैं तो गंदा हो जाता है बास, तो उसको भी शुद्धि करते हैं। तो धन की शुद्धि भी करनी चाहिए। तो नंद महाराज जो है देखिए कितना दान किए अपने पुत्र के उत्सव पर, और इसके साथ आशीर्वाद भी प्राप्त किए। कोई देता है तो उसके बदले में आशीर्वाद मिलता है। ब्राह्मणों को अगर आप दान देते हैं तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि हमें दान करना चाहिए। जो है आपके उसका कुछ अंश दान करना चाहिए। आपके पास खाने के लिए भी कुछ है तो बांट कर खाना चाहिए। अगर पहनने के लिए भी ज्यादा है तो कुछ बांट देना चाहिए। तो कितना जमा करेंगे, ज्यादा जमा करके रखेंगे तो उसको सफाई करना रखना भी है। बांटने से अच्छा होता है, फल मेवा हो या मिठाई, बांट बांट करके खाओ। जो भी है उसको बांट कर खाना चाहिए। तो बांटने से उसका दोष जो है निकल जाता है। एक सेठ थे, बरसाना में रहते थे, तो उनके उनकी तीन बहुएं थीं, तीन पुत्र, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। तो कभी कभी सोचते थे कि मुझे भी एक पुत्री होती तो मैं दान करता, कन्या दान। कन्या दान करना भी महादान है। ब्रह्मचारी लोग नहीं कर सकते। गृहस्थ लोग सोचते हैं कि हमें भी एक कन्या होती तो कन्या दान करता है। श्याम कृष्ण जी किए हैं अभी कन्यादान। कन्यादान कर चुके हैं ना, तो कन्या के साथ साथ में बहुत कुछ देना, दान करना पड़ता है। तो सेठ को कभी कभी ग्लानी होती थी कि मुझे भी एक कन्या होती तो मैं भी दान करता। कन्यादान करना भी सर्वोत्तम दान है। और दान करना है तो योग्य पात्र को दान करना चाहिए। दान पात्र में डालेंगे तब ना, तो कचरा पेटी में डाल देंगे तो नहीं होगा। दान कहाँ डालना है, पात्र में। तो लेटर बॉक्स को लेटर बॉक्स में डालेंगे तो अपने डेस्टिनेशन में जाता है, और कचरा पेटी में डाल देंगे तो नहीं जाएगा। कहाँ देना है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। नीति शास्त्र में कहा गया है कि दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है और समुद्र में वृष्टि व्यर्थ है। और दान भी योग्य ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को दान दिए, योग्य पात्र को देना चाहिए। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। तृप्त आदमी को भोजन कराना, मान लीजिए खूब खाया है और उसको बोले कि चलिए हमको हमारे यहाँ निमंत्रण स्वीकार कीजिए, तो भूखा आदमी होगा तो उसको खिलाएंगे तो बहुत खुश होगा, वो आशीर्वाद देगा। खूब खाया है यहाँ से, चपंत भोजन, चपंत पानी, अखंड निद्रा। उसको जगाएंगे कि चलिए खाएंगे, बोले कि नहीं अभी नहीं हम खाएंगे। बोले 500 दक्षिणा भी देंगे, बोले भी अभी हम नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। अगर भूखा है तो दक्षिणा नहीं, खाने के लिए तो बोले चलिए चलिए प्रभु जी, मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं खाने को मिले। वृथा तृप्तस्य भोजनम और वृथा दानम समर्थस्य। बहुत बड़े धनी व्यक्ति को 10 रुपया दान आपको करता हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैं मुकेश अंबानी कहेंगे 10 रुपया दान लीजिए हमारे तरफ से, तो अपमान है ना। वो बहुत धनी व्यक्ति को 100 रुपया दीजिए, वह 1000 रुपया भी देंगे, मुकेश अंबानी कहेंगे लो 1000 रुपया दान हमारे तरफ से, तो दान क्या, उसके लिए अपमान है वो, ये आदमी अपमान कर रहा है मुझे। लेकिन वही जरूरतमंद को देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा वो कि चलो 1000 रुपया मिल गया, मुझे जरूरी था। किसी को ठंडी में चादर ना हो, चादर है तो बहुत खुश हो जाता है, अरे प्रभु वाह, मैं तो सोचता ही था चादर खरीदने वाला था कि नहीं। मान लीजिए किसी के पास चादर नहीं है, आपके पास 2 है, दे दिए तो बहुत खुश होगा वो। और जिसके पास है 10 है, बोलेंगे मेरे पास तो 10 है, मैं ही आपको देता हूँ। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। तो सेठ भी वो सोचता था कि एक कन्या होती तो। एक दिन सत्संग में गए तो थोड़ा उदास थे, तो संत कहे कि क्यों सेठ बहुत उदास हैं, क्या बात है, अब आज बहुत उदास न जा रहा है। कभी कोई कोई बात कभी किसी के मन में कभी उभर जाती है, तो कहे कि मैं कभी सोचता हूं कि मेरे पास भी एक कन्या होती तो कन्या दान करता। तो संत कहे कि इसमें क्या बात है, राधा रानी को ही अपनी कन्या मान लो, राधा रानी को ही अपनी पुत्री मान लो और उसको ही सेवा करो पुत्री भाव से, जो देना है दो। तो सेठ राधा रानी का एक पिक्चर फ्रेम करके अपने बेडरूम में रख दिए और जब जाते थे कहीं तो बात करके, या बेटी ठीक हो, कुछ चाहिए, कुछ लाना है बाजार से, और रात को भी आते थे अपने दुकान से तो बात करते, ठीक हो, बात करते थे मन ही मन कि बेटी के लिए क्या लाना है, क्या देना है। तो कुछ समय के बाद एक दिन सेठ अपने दुकान में थे, अब मनिहारी नाई चूड़ी पहनाने वाली प्रति वर्ष में दो बार तीन बार आती हैं चूड़ी पहनाने वाली, पहले घर घर मनिहारी आती थी चूड़ी पहनाने के लिए, गांव में अभी भी है प्रथा। तो मनिहारी आती थी दो महीने चार महीने में चूड़ी पहनाकर जाती थी और सेठ से पैसा ले लेती थी। तो मनिहारी नाई और तीन बहुओं को चूड़ी पहनाई, जाने वाली ही थी तो एक और कोई लड़की आ गई घूंघट में। तो मनिहारी ने सोचा कि इनके घर तो तीन बहुएं ही हैं, कोई मेहमान होगा, कोई मेहमान आया होगा, तो चूड़ी पहना दी। फिर दुकान में गई सेठ के, सेठ जी चार लोगों को चूड़ी पहनाई हूँ। सेठ का कि चार कहाँ से, घर में तीन बहुएं, झूठ बोल रही हो, मेरे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया है, तीन बहुएं हैं, तीन का पैसा लो। सेठ बहुत गुस्सा हो गया, मनिहारी बगी झूठ बोल रही है, तीन बहुएं हैं तो चौथी कौन। मनिहारी तीन का पैसा लेकर चली गई। सेठ दुकान से रात को गए, जब अपने बेडरूम में गए तो राधा रानी से मन ही मन बात किए, देखे कि हमारी पुत्री ठीक है, प्रसन्न है। जब सो गए सेठ तो राधा रानी स्वप्न में आई और राधा रानी ने कहा कि राधा रानी बहुत उदास थी। तो सेठ ने कहा कि बेटी क्यों उदास हो, क्या बात है, स्वप्न में राधा रानी बहुत उदास थी। तो सेठ का क्या बात है बेटी, आज बहुत उदास हो, क्या बात है। तो राधा रानी ने कहा कि आपने तीन बहुओं का पैसा दिया लेकिन मेरा पैसा आप क्यों नहीं दिए, आप पुत्री तो बनाए हैं लेकिन उसका निर्वाह नहीं किए। ब्रज में है, ब्रज भाषा में है कि तनया बनायो तात नात ना निभायो हैं, आ चार चूड़ी काज है तुम ही बिसरायो हैं, आपने पुत्री तो बनाया है लेकिन उसका फर्ज आपने नहीं निभाया, चार चूड़ी के लिए भूल गए। वैसे संबंध को आपने पुत्री, पिता पुत्री का संबंध बड़ा मधुर होता है, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, पत्नी बीमार हो तो आदमी कहता है कि पूरी संपत्ति हम लगा देंगे, डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए। पुत्र बीमार होता है पैसे की परवाह मत करिएगा डॉक्टर साहब, हम सब कुछ गिरवी रख देंगे, ठीक कर दीजिए कैसे भी, वहाँ आदमी पैसे का महत्व तो नहीं देखता है। लेकिन नौकर बीमार हो जाए तो डायरी में लिखेगा 5,000 रुपया दे रहा हूँ, ध्यान रखना, भूलना मत, दे देना वापस। नौकर बीमार होगा तो आदमी लिखता है, बोलता है भूलना मत, देखो 5,000 यहाँ साइन कर दो बोल के। आ लड़का बीमार हो तो लाखों लोग देकर हिसाब नहीं रखते हैं, न लेते हैं। नौकर बीमार हो तो आदमी नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए, मैं पूरी जमीन घर गिरवी रख दूंगा, नौकर के लिए कोई नहीं रखेगा। तो संबंध जो है, राधा रानी ने कहा कि आपने पुत्री तो बनाया है लेकिन फर्ज नहीं निभाया और तीन चूड़ी का पैसा आपने दिया तीन लोगों का। तो सुबह सेठ को, सेठ के आंख से आंसू गिरने लगे, झरझर झर आंसू गिरने लगे कि वास्तव मैंने पुत्री तो बनाया था लेकिन भूल हो गई। तो सेठ भागा सुबह मनिहारिन के पास गया कि वास्तव में तुम बहुत भाग्यशालिनी हो, कि मैंने तो पुत्री बना लेकिन तुमने हमारे पुत्री के कलाई में चूड़ी पहना है, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। सेठ मनिहारी के चरण में गिर गए कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। उसी तरह कृष्ण को नंद महाराज कृष्ण को पुत्र बनाए हैं, कृष्ण उनके पुत्र बने हैं, इसलिए सब लुटा रहे हैं। कृष्ण जिनके पुत्र बन जाएं और राधा रानी जिनकी पुत्री हो जाएं तो सब लुटा देना चाहिए। अब किसके लिए रखना है कि नहीं, कृष्ण पर सब ने उछावर कर देना चाहिए। और कृष्ण को देने से कमी नहीं होता है, कोई भगवान को देता है तो भगवान उसको कई गुना ज्यादा करके दे देते हैं। तो यहां पर बहुत सुंदर इसमें दृष्टांत दिए गए हैं कि हम कैसे अपने को शुद्ध कर सकते हैं, शरीर को स्नान के द्वारा शुद्ध करते हैं, संपत्ति को दान से शुद्ध करते हैं, इंद्रियों को तप के द्वारा शुद्ध करते हैं, मन को संतोष के द्वारा शुद्ध करते हैं। संतोषम परम सुखम, संतोष रखना चाहिए। एक बार महाराज के पास कुछ भक्त गए, प्रोग्राम था बिरार में, तो कुछ भक्तों से महाराज कहे कि कहाँ कैसे आना हुआ, वृंदावन से लोग गए थे, तो बोले कि बिरार में कथा है असीम जी का। तो महाराज कहे कि बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग मिलकर महाराज चाहे तो मैं कहा कि महाराज कुछ कहे, कुछ उपदेश दिए होंगे महाराज। तो लोग कहे कि महाराज कहे कि मांगना नहीं चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बोले हमको 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, इतना देंगे तो हम कथा करेंगे, इतना देंगे तो हम कीर्तन करेंगे। तो महाराज कहे कि संतोष रखना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, और कोई दे तो मना नहीं करना चाहिए। मांगना नहीं है, कोई दे रहा है तो मना मत कीजिए। बहुत अच्छा। मैं कहा उन लोगों से, मैं कहा कि देखो कीर्तन वाले प्राय पैसा मांगते हैं कि इतना पैसा देंगे तो हम आपके कथा में कीर्तन करेंगे, 7 दिन कथा है तो 7,000 लेंगे, 1,000 रोज लेंगे, और देने में कमी होगी तो झगड़ा भी करने लगते हैं वो लोग। तो महाराज जानते थे तो कहे, तो मैं वो लोग आए तो मैं पूछा कि महाराज क्या कहे। महाराज तो जरूर कुछ न कुछ कहे होंगे, गाइडलाइन दिए होंगे। तो लोग कहे कि महाराज कहे कि मांगना नहीं चाहिए और कोई दे तो माना नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए और कोई दे रहा है तो माना नहीं करना चाहिए, ले लीजिए। तो दान का भी कोई अपने से स्वतः दे रहा है तो वो दान है, और मांग लिए तो भिक्षा हो गया, मांगना नहीं चाहिए। अगर किसी के यहाँ जाकर अब मांगने तो भिक्षुक हो गए, भिखारी हो गए। अपने से, अपने स्वभाव से, अपने प्रसन्नता से, अपने विवेक से अगर दे रहा है तो वो स्वीकार करना, उसमें बरकत होता है। जो प्रसन्न होकर स्वाभाविक अगर देता है तो वो दान लेने में कोई नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती से मांग कर लेना या छल कपट का सहारा लेकर लेना तो वो दान नहीं है। ये देने लेने की एक कला है। तो नंद महाराज अपने स्वभाव से, अपनी प्रसन्नता से स्वाभाविक दे रहे थे, कोई दबाव में नहीं। पहले से साटा लिखा दिया, इतना देना ही है आपको, देना है। तो इससे शुद्धि होता है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए दान जो है करना चाहिए अपने स्थिति के अनुसार। नंद महाराज कितना दान कर दिए, आ कुछ नहीं है तो बचने न किम दरिद्रताम, अगर देने के लिए कुछ नहीं तो वाणी से, वाणी का दान कर सकते हैं, वाणी से स्वागत कर सकते हैं। आपके घर में कोई आ गया तो उसको आसन दीजिए, उसको वचन से स्वागत कर सकते हैं, सुस्वागतम। તેને વાણી છે અગત કરના. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. સમય જ્યાદા હો ગયા તો એ દાન કી મહિમા હૈ ઇસમે, આપ લોગ ભી દાન કરીએ. તો બોલે હમ બ્રહ્મચારી હમ ક્યા દાન કરેંગે, તો વિદ્યા દાન કરીએ. અભી વિદ્યા દાન કા ચલ રહા હૈ ને, જ્ઞાન દાન સબસે પહેલા દાન. કોઈ કહે કે આપ લોગ ક્યા દાન કરતે હૈ, તો હમ વિદ્યા દાન કરતે હૈ, ભગવદ્ ગીતા સ્પોન્સર કરા કર બાંટતે હૈ, એ સબસે બડા દાન હૈ. નંદ મહારાજ ને ગો દાન કિયા, ભૂમિ દાન કિયા, તો ભક્ત લોગ જ્ઞાન દાન કરતે હૈ. સબસે બડા જ્ઞાન ક્યા હૈ, ભગવદ્ ગીતા, રાજ વિદ્યા, કિંગ ઓફ નોલેજ. જ્ઞાન દાન કરના સબસે બડા દાન હૈ. તભી ગીતા જયંતી કે ઉપલક્ષ્ય મેં ભક્ત લોગ ઘર ઘર જાકર ગીતા દેતે હૈ, સ્પોન્સર કરકે દેતે હૈ, યા નહીં તો એસે દેતે હૈ. પૈસે પર ભી દે રહા હૈ તો દાન હી હૈ, જ્ઞાન કા કોઈ મૂલ્ય નહીં હૈ. હમ કાગજ કા દામ લેતે હૈ, હમ લોગ બોલતે હૈ કાગજ કા દામ હૈ, આ ગીતા કા જ્ઞાન હૈ. એ જો 100 રૂપિયે હૈ કાગજ કા દામ હૈ, આપ પૈસા થોડે દે સકતે હૈ, ઇસ જ્ઞાન કા કોઈ પૈસા નહીં દે સકતા હૈ. ભગવદ્ ગીતા કા જો જ્ઞાન હૈ, ઇસકા મૂલ્ય કોઈ નહીં ચુકા સકતા હૈ. અમોલ હૈ, અમોલ વસ્તુ હૈ. કેવલ એ પેપર કા દામ હૈ, આ ગીતા કા જ્ઞાન હૈ, તે સબસે બડા દાન હૈ. કોઈ બોલે કે આપ દાન કહાં, આપ તો પૈસે લીએ હૈ, પૈસા કહાં લીએ હૈ, જ્ઞાન તો આપકો ફ્રી મેં હમ દે રહે હૈ. તો ઇસ સમય સબકો જ્ઞાન દાન મેં લગ જાના ચાહીએ. મહારાજ કહ રહે થે, ગોપાલ કૃષ્ણ મહારાજ જુહુ મેં, કે હર આદમી કો જાના ચાહીએ ગીતા બાંટને કે લીએ. મહારાજ કહે કે ઇટ લેસ એન્ડ સ્લીપ લેસ, સીમ લેસ. આ મોબાઈલ ભી બંધ કર દેના ચાહીએ, સબ લેસ લેસ, તમ ને જ્યાદા બાંટેંગે, સીમ રખેંગે તો ઉસી મેં લગે રહેંગે, વોટ્સઅપ મેં તો ઇસમે તો ઉસમે. ઇટ લેસ, સ્લીપ લેસ એન્ડ સીમ લેસ. મોબાઈલ લેકર રહેંગે તો કોઈ ક્યા ભાવ હૈ પ્રભુજી, ઇસકા ક્યા દામ હૈ, ઉસી મેં લગે રહેતે હૈ. રુકીએ, ક્યા ઘબરાતે હૈ, ઇસલે સીમલેસ, તબ જ્યાદા હમ પ્રચાર કર સકતે હૈ. તો ગીતા જયંતી પર જ્યાદા જ્યાદા મહારાજ કહે કે પ્રચાર કરના ચાહીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરના ચાહીએ. કમ ખાઓ, કમ સો, લેકિન ઉલ્ટા હો જાતા હૈ. મેરાથન કે નામ પર લોગ જ્યાદા ખાતે હૈ, 12 બજે આયે તો ખાએ ખૂબ, યે કરકે અબ ખૂબ સોએ. જ્યાદાતર લોગ ઉસકા લાભ ઉઠા લેતે હૈ. મેરાથન હમ નહીં આયેંગે મંગલ આરતી, આપકો માલુમ હૈ કે મેરાથન હૈ. હમ જગાને જાતે થે, પહેલે તો બોલતે થે પ્રભુજી મેરાથન ચલ રહા હૈ, અભી એક મહિના તો મંગલ આરતી હમ નહીં આયેંગે. લેકિન મહારાજ કહેતે થે ઈટ લેસ, સ્લીપ લેસ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી.